आगे है तीर को नंबर 3 आयत 130 से 140। आखरत के हिसाब के लिए आज डर जाइए। क्या या माशरल जिन्नी वल इंसी अलम या तिकुम, ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर ना आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते। वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनिया की जिंदगी ने भूल में डाल रखा था, और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफिर थे। ये इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफर के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों, और हर एक को इसके आमाल के सबब दर्जे मिलेंगे। इसको नोट कर लें, आप लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह बहुत दर्जे देगा। एक एक थकन का, एक एक तकलीफ का, एक एक कदम चलने का, एक एक पैनी खर्च करने का अजर मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और आपका रब इनके अमाल से बेखबर नहीं है, और आपका रब बिल्कुल गनी और रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले। एक जलजले का झटका आए, सब जमीन बोस हो जाए, और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली है, और तुम आजिज़ नहीं कर सकते। आप ये फरमा दीजिए कि मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। बस जल्द ही तुमको मालूम हो जाता है कि इस आलम का इंजामेकार किसके लिए नफ़ामंद हुआ या होगा। ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह ना होगी। और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किया, यहाँ फिर ज़रा बातों के जाल सुनिएगा, ये खुद साख्ता शरीयत थी उनकी जिसको अल्लाह ने एज इट इज़ पेश कर दिया। और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए, इन लोगों ने इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया, और ख़ुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है। ज़रा इसको गौर से सुनिएगा, इसमें फिर हमें आईना दिखेगा। फिर जो चीज़ इनके माबूदों की होती है तो वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचती, और जो चीज़ अल्लाह की होती है वो इनके माबूदों की तरफ पहुंच जाती है। क्या बुरा फ़ैसला वो करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में इनके माबूदों ने इनकी औलाद के कत्ल करने को पसंदीदा यानी मुस्तहसन बना रखा है, ताकि वो इनको बर्बाद करें और ताकि इनके दीन को इन पर शुबे वाला यानी मुश्तबे कर दें। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये ऐसा काम ना करते, तो आप इनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं, इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय इनके जिनको हम चाहें, और मवेशी हैं जिन पर सवारी और बार बर्दारी हराम कर दी गई, और मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पर। अभी अल्लाह ताला इनको इनके झूठ बांधने की सज़ा दे देता है, और वो कहते हैं कि जो चीज़ इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है तो इसमें सब बराबर हैं। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानियों की सज़ा दे देता है, बिला शुबा वो हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बराहे हमाकत बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला, और जो चीज़ें इनको अल्लाह ने इनको खाने पीने के लिए दी थी इनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पे। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए। बहुत ही ज़्यादा बातों के जाल थे, आपको काफ़ी हद तक तो समझ आ भी जाता होगा, लेकिन मक्का वालों की खुद साख्ता शरीयत की ये कुछ आयतें थी। अपनी खेतियाँ या जानवर, जो दो उनके सोर्स ऑफ इनकम थे, उसके तीन हिस्से करते। माजरत के साथ बुरा ना मनाएं, तो जैसे आपकी ये 3 रोज़ है ना, इस हिस्से में जो फसल उगेगी ना इसका नफ़ा हम खुद रखेंगे, ठीक है। इस हिस्से में जो फसल उगेगी ना इसका हिस्सा हम अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देंगे, राइट हैंड वाले हैं ये, और आपसे माजरत। इस हिस्से से जो प्रॉफिट मिलेगा ये हम अपने बुतों के नाम पे जाके चढ़ावे चढ़ा देंगे। अब फसल हर साल एक जैसी थोड़ी आती है, अगले साल क्या होता, इधर तो फसल आ गई, इधर नहीं आई, इधर भी आ गई, अब क्या कहते, नहीं तो ना सही, अल्लाह के नाम पे रखी थी नहीं आई तो हम क्या करें फिर, हमारा तो अपना ही हाथ बड़ा तंग है। फ़र्ज़ चीज़ें भी छोड़ देते, अपनी मन्नतें भी ना पूरी करते। हो सकता है अगले साल अब इस हिस्से में फसल ना आए, तो यही कहना चाहिए ना जो पिछले साल इधर कहा था। क्या कहते थे? ना 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 ना, इनको नहीं नाराज़ करना। सामने दिखती थी ना मूर्तियाँ, आज भी हम सामने दिखती चीज़ों से डरते हैं। जो उजल है, जो अजनबी है, उसका हम पे क्या बोझ है? नहीं जी नहीं है, अपनों से बड़ा डरते हैं, जिनसे सुबह शाम का सलाम है। खैर अब क्या करते? ना ना, इनको नहीं नाराज़ करना। फिर इस साल इस हिस्से का जो प्रॉफिट था ना अल्लाह वाला, वो इधर से पकड़ के इधर देते। अल्लाह कहते हैं क्या खूब, अंधा बांटे शिरीनी बार बार अपनों को। अल्लाह का डर कम, बुतों का डर ज़्यादा, ये बात है। आगे पढ़ेंगे सूरह नजम में, तिल का किस्मतुन जीजा। अल्लाह कहते हैं तो बड़ी धांधली वाली तकसीम है। अच्छा ये तो ना समझी की बात ही लग रही है, क्या हम तो नहीं ऐसा करते? आजकल हाथ बड़ा तंग है। वो जो मैं अल्लाह के नाम पे देती थी ना, अब ज़रा कुछ महीने मैं नहीं दूंगी। महंगाई बहुत हो गई है ना, अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। आज भी कुछ लोग, सिर्फ माल नहीं, वक्त, हम जब दुनिया में किसी चीज़ में अटकते हैं ना, तो हमारी नमाज का टाइम निकल जाता है। बाज़ दफ़ा इफ्तारियाँ करने कराने में ही हमारी नमाजें चली जाती हैं। खुला हाथ हो, ज़्यादा हो तो हम नफिल भी पढ़ लेते हैं, और ज़रा सा कोई काम पड़ जाए तो फ़र्ज़ भी बोझल। हकीकत ये कि आज भी लोग यही करते हैं कि वो सलामती वाला घर जो अल्लाह ने आपके मेरे लिए तैयार कर रखा है ना, उसको जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हो जाएगा, मिल जाएगा, अल्लाह तो अपना ही है, ऐसा है वैसा है। क़यामत के दिन जब सारी हकीकतों से पर्दा उठेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि ना सिर्फ ये कि खुद भटके और उसका गुनाह, जिनको भटकाया उनका भी गुनाह। और जब नेकियों का पलड़ा खुलेगा, अच्छा ये तो मेरी है, ये किसकी नेकियाँ हैं? कहा ये वो है जिन्होंने तेरी वजह से नेकियाँ की। ये हकीकत कल खुलेगी। आखिरत में सब मस्नूई सहारे छिन जाएंगे, सारे पर्दे खुल जाएंगे, वो सब दिखने लगेगा जो आज नज़र नहीं आता, क्योंकि वली कुल दिन दरजात है मैं मामिलू। तो आज आपके मेरे पास मोहलत है। दुनिया में बहुत सारे लोगों के मर्तबों में फ़र्क होता है, कोई बहुत हसीन होता है, कोई कम हसीन होता है, किसी का कद अच्छा लंबा है, किसी का कद छोटा है, किसी के पास दौलत बहुत है, किसी के पास कम है, किसी का घर बहुत हसीन है, किसी का बहुत छोटा है। दुनिया में तो ये मर्तबों का फ़र्क, उससे अल्लाह की रज़ा या नाराज़गी का कोई दखल नहीं। ये तो इम्तिहान का पर्चा, किसी को ज़्यादा सवाल हल करने पड़ते हैं, किसी को कम। किसी को सिर्फ 500 गज़ का ही पेपर देना पड़ता है, किसी को 5,000 गज़ का पेपर देना पड़ता है। आखिरत में क्या होगा? आपको मुझे दर्जे मिलेंगे इस दुनिया में की हुई कोशिशों, मेहनतों और अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ के तहत। अल्लाह ताला दुनिया के आमाल को आखिरत के लिए जमा कर देगा। तो अक्लमंद कौन है कि इस कमरे इम्तिहान से जल्दी से फारिग हो और वहाँ दारुल जज़ा में पहुँचे। सहाबा को ये बात समझ आ गई थी। ये सारी जो बातें आप सुन रहे हैं ना, ये सहाबा के कान सुनते थे। आप और मैं 8वें पारे की नायतों में सुन रहे हैं ना सूरत अलनाम में, सहाबा और हज़रत खदीजा जैसे लोग उठते बैठते मक्का की गलियों में यही बेकार बातें सुनते थे, ये हलाल ये हराम, उसको ना करो। लेकिन उन्होंने कान तक ना धरे, क्यों भला? फितरत पे थे, मार्फत हो चुकी थी हक की। अल्लाह आज के दौर के फितनों में हमें सीधा रखे, हमारी नस्लों का आने वाले फितनों में सीधा रखे। तो जो कुरान से जुड़ा रहता है ना, अल्लाह ताला उसको काफ़ी हद तक चीज़ों को पीछे डालना सिखा देते हैं। और अल्लाह ताला हमें इस तरह की बांट करने से बचाए कि हर हमारी खुशी, गम, बीमारी, परेशानी की चोट दीन पे पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये ऐसे में शराकत होती है, क्योंकि जिस चीज़ को हम बड़ा समझते हैं, हम उसी के साथ ये मामला करते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह की रज़ा को पाने के वाले अमल, अल्लाह आमाल से बाखबर है, इसका एहसास करना है। अल्लाह चाहे तो हमसे बेहतर लोग ले आएगा, इसका एहसास करके क्या करेंगे भला? आप अपनी नेकियों को दोनों हाथ से पकड़िए। अच्छा कुछ लोग टिश्यू पेपर की तरह नेकी पकड़ते हैं, यूँ बिल्कुल पता नहीं कहाँ फेंक दिया, कहाँ छोड़ दिया, किधर गया वो पता नहीं, गिर गया। और कुछ ने हज़ारों के नोट की तरह अपनी गुमराही को पकड़ा होता है, ये हाथ से ना छिन जाए। नहीं अब खुशी के नाम पे ये तो करना पड़ेगा। आपको मुझे अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमारी नेकियां हमें ही दे दे, हमें सुस्त ना करना, हमें महरूम ना करना। फिर आखरत की मुलाकात से डरना, खुद साख्ता पाबंदियों को कबूल नहीं करना, जुल्म और शिर्क से बचना है, और दीन में शक नहीं करना, क्योंकि शक अमल का शौक छीन लेता है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। आगे रुकू नंबर 4 है, 141 से 144। अल्लाह का हक अदा करना है। वहुवल्लज़ी अनशा जन्नातिम मारूशात, और वही है जिसने बागात पैदा किए, वो भी जो छतरियों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबे भी होते हैं और एक दूसरे के मुशाबे नहीं भी होते, इनके फलों में खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है वो इसके काटने के दिन दिया करो और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और मवेशियों में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिला शुबा वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। अब यहाँ फिर आगे देखिए बातों का जाल, ये भी खुद साख्ता शरीयत है। आज आपको भी ऐसी कई चीज़ें मिलेंगी, ये रजब के कूड़े हैं, इसको सिर्फ औरतें खाएंगी, इसको हामिला औरतें नहीं खाएंगी, कोई मर्द इस महफिल में ना आए। एक सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो ऐसी किसी रस्म में गई रजब के महीने में, तो उनके पास बेबी था, यानी 3-4 साल का बेटा था, तो कहती औरतों ने शोर मचा दिया, क्या ना 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 ये महफिल सिर्फ औरतों की है, तो मर्द आएगा तो इसकी वो बरकत ख़त्म हो जाएगी। कहती मैं बड़ी शर्मिंदा हुई कि मैं बच्चे को कहाँ छोड़ूँ। अच्छा अल्लाह करे ऐसी सेग्रीगेशन शादियों में भी हो कि इधर मर्द ना आए इधर औरतें आएँ, ये मस्तूरात है ये गैर मस्तूरात है। कहती मैंने अपने बच्चे को सुलाया, अल्लाह अल्लाह करके वो सो गया, और उसको मैंने जाकर दूसरे कमरे में लिटा दिया, तो ज़रा सी उनकी जान में जान आई। चलो अब 10 बीबियों की कहानी पढ़ते हैं। कहती जूं ही कहानियां शुरू की वो पीक पे पहुंची, मेरा बच्चा अंदर से उठ के आ गया। आपको ये दीन लगता है? आप शादियों में कोई तमाम नहीं करते कि इधर मर्द इधर औरत, ये मर्दान खाना ये जनान खाना, और आप रस्मों के नाम पर ये कुंडे भरने हैं, ये दादी अम्मा करती थी, ये रजब की बातें, ये मेराज शरीफ की, ये शब रात की बातें, हम इनको सुन सुन कर इतना सुन्न हो चुके कि अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा ये मेरा जुमला कि इन्होंने क्यों नाम लिया, ज़रा देखो देखो ये क्या कह रही हैं। लेकिन क्या आपके दिल को ये बातें लगती हैं? ये दीन हो सकता है? और है तो अभी चलिए 8 पारे हुए हैं माशाल्लाह, अभी बहुत सारे पारे पीछे हैं, गिनते जाइए, कहीं भी कोई रेफरेंस मिलेगा तो दिखाइए। ये है आज हमारे माशरे का मसला, खुद साख्ता शरीयत और खुद साख्ता नेकियों के कामों में हम इतने बिजी हैं। आज अगर रमज़ान ना होता और इस घर में आप एक मिलाद तो रखते, आप इस घर में एक कुरान खानी तो रखते, मेरे लिए वो ऊपर गेट तक लाइने लगी होती, हजारों लोग आ जाते। आज भी लोग जाते हैं, गुठलियाँ पढ़ाइए परा करके पढ़ाइए, क्यों जाते हैं भला? अमल पे चोट नहीं पड़ती, इतनी देर बैठना नहीं पड़ता, खोल खोल के कोई मुसहफ को देखना नहीं पड़ता, और थोड़ी थोड़ी देर बाद कचोके नहीं लगते। बंद कुरान की इज्जत आज भी बहुत है, अल्लाह हमें खुले कुरान की इज्जत करने वाला बना दे। आप सुनिएगा जरा उनकी बेकार रस्में, क्या अल्लाह फरमाते पैदा किए 8 नर मादा, यानी भेड़ में से 2 किस्म और बकरी में से 2 किस्म। आप कहिए कि अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं, तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर सच्चे हो। कहते थे जानवर यानी बकरी है ना, तो उसके पेट में बच्चा है, अब बकरी ज़िबा की तो मुर्दा बच्चा निकला, तो कहते थे ना ना मर्द ये गोश्त नहीं खा सकते, औरतों को खिला दो। जैसे आज भी बहुओं के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, और चलो ये दाल जल गई औरतें खा लेंगी, चलो दाल औरतों की और गोश्त मर्दों का। अच्छा अगर बच्चा जिंदा निकलता तो कहते अब सब खा लो, खुद साख्ता बात है, बेतुकी बातें हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कौन सी बेतुकी बातें हैं, चले कुछ और भी अच्छी बातें कर लें। सवा मन मिठाई शादी के मौके पे आएगी टोकरे में भर के, बिद के टोकरे कितने आए हैं, वो खजूरें और वो कुर्ता टोपी में कितनी मिठाई आई है मायके से ससुराल से कहानी है। आज हमारी हैं बेतुकी रस्में, सवा मन मिठाई, घर के नौकरों की मौज हो जाती है। अच्छा कोई कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, कुछ और कर दो। आप किसी के भी घर जाते हैं, आप केक ले जाते हैं बड़ा सा, ईद पे देखिए कितने केक आएंगे, यूनाइटेड वालों के और फलां के और फलां के। आप किसी के घर प्याज क्यों नहीं लेके जाते हैं? मैंने सुना 200-300 रुपये किलो है। 1,000 का तो केक आता ही होगा ना, कोई छोटा सा कि नहीं आता। 1,000 के अब 3 किलो प्याज ले जाएं किसी के घर तो क्या बुरी बात। आज आप इफ्तारी भेजें किसी के घर तो किलो प्याज भेजें, मेरे वाले दुआएं देंगे आपको। शलजम भेज दें, टिंडे भेज दें, कद्दू भेज दें, बुरा बनाए क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल आजकल बुरा मनाएंगे जितना प्याज की धूम मची हुई है। लेकिन ये हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं, कहीं भी जाएंगे ना कुछ लेके जरूर जाना है। शादी में जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, शर्म आएगी। ये जो रस्में होती है ना, हम उसके इतने यूज्ड हो चुके थे हमें बुरी नहीं लगती। हमें ये बातें अजीब लग रही हैं, उनको कोई नहीं अजीब लगती, क्योंकि हमारी भी ऐसी बहुत सारी रस्में हैं जो अभी तो मैंने बोली भी नहीं है। असल बात यह है कि फारिग बहुत है, हम बैठ कर सिर्फ यही सोचते रहते हैं अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझे दलील तो दे दो अगर सच्चे हो, और ऊँट में दो किस्म और गाय में दो किस्म। आप कहिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों। क्या तुम हाजिर थे उस वक्त जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया? तो इससे ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे? यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। तो इन सारी बातों को सुनकर अल्लाह से एक दुआ कीजिए, अल्लाह हिकमत दे, जो काम करें ना दलील की बुनियाद पे करें। मैं भी आपसे कल कुछ कहूँ ना कि ये काम करें तो आप उसकी दलील मांगिए, सनद मांगिए। और ख़ास तौर पे हम सहाबा कराम का मौजू पढ़ रहे हैं तो आप देखिए सहाबा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अक्ल नहीं इस्तेमाल करते थे दीन के मामले में। आज हम क्या कहते हैं, क्या फ़र्क हुआ, क्या हुआ, किसी का दिल तो नहीं टूटा, हमने किसी को नाराज़ तो नहीं किया। अगर इन सारी बातों को सुनकर वो लोग भी यही कह देते किसी का क्या हुआ। आज भी लोग इस तरह की बातें करके अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं। अच्छा, नाम इब्राहिम और इस्माइल का ही लेते थे। आज हम भी इस्लाम का लफ्ज़ नहीं हटा सकते, लेकिन हर काम वो करेंगे जो दूसरे करते थे। तो याद रखिए ऐसे लोग दीन के असल तकाजे से बहुत दूर होते हैं। और वो क्या आपको पता है, दीन के दो बड़े तकाजे हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ और आखरत की फ़िक्र। वो रोज़ अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं। हाँ, कुछ गैर मुतल्लक ज़ाहरी चीज़ों में तशद्दुद की हद तक कवायद और ज़वाबित का एहतमाम करते हैं। इबादत में इतने स्टबन, पाँव से पाँव जोड़ेंगे, टखने से टखना जोड़ेंगे, घुटने से घुटना मिलाएंगे, लेकिन अमली ज़िंदगी में कटे हुए, टूटे हुए। शैतान की ये चाल है कि ऐसी बातों के जाल में फंसा कर असल दीन से लोगों को दूर कर देता है, शिद्दत पैदा कर देता है लोगों के दिलों में। उनकी सारी इख्तियात आप इबादत तक होती है। इबादत के ज़ाहिर में तशद्दुद बरतते हैं लेकिन दिल खुशू और खुदू से खाली। ज़ाहरी आदाब बहुत निभाएंगे लेकिन अंदर दिल में कुछ नहीं होता। हत्ता कि आपने देखा कि अपनी औलाद को कत्ल तक कर देते हैं। अरब लोग अपने बच्चों को 3 वजूहात से कत्ल करते थे, और उसमें एक क्या था, हमारे साथ खाएंगे, वो तो मौजू आएगा सूरह बनी इसराइल में। अपने बुतों के नाम पे पहली औलाद, यानी आपका पहला बच्चा जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, पहलोठी का बच्चा, हबल कह लीजिए, और इसी तरह के कुछ और नाम थे, उस नाम के बुत के चरणों में जाकर अपने पहले बच्चे का खून डालते थे। कुर्बानी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन कहते थे कोई बात नहीं, ये हमसे खुश हो जाएगा हमारा खुदा। अल्लाह कहते हैं कत्ले औलाद जैसे काम को इतना अच्छा समझते हो? अल्लाह के दिए हुए पाकीज़ा रिस्क को तुम बुतों के नाम पे ज़ाया करते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो और बड़े बड़े काम छोड़ देते हो, तो तुम्हें इस ज़मीन पे रहने का हक़ नहीं है। ये सब बिदात है, बल्कि इसका पूरा एक टॉपिक लिख लें जो मैंने ऊपर आपको दिए ना बातों के जाल, नीचे लिख लें मुशरिकीने मक्का की बिदात। और ये बातें सुन सुन के लोग सुन हो चुके थे। आज भी आप अपने मुल्क में देखें, जैसे किसी ने अपने किसी की बात शेयर की थी कि सारी ज़िंदगी गलत चीज़ों पर रहे, फिर कुरान पढ़ा तो समझ आ गया कि अल्लाह के नबी ने ये कुछ नहीं किया मरने पे रस्में और जीने की। जब खुद बीमार हुए तो बीवी ने पूछा कि अब मैं ये आपके तीजे और चौथे और ये कुछ तो ना ना करूं, तो कहने के नहीं कर देना, क्या पता काम ही आ जाए। वो कहते हैं ना, नहीं छुट्टी मुंह को लगी हुई। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, हमें शैतानी बातों से उसके वसवास से बचाए, और ऐसे काम कर करके हम अपनी की कराई जो नेकियां हैं उसको भी ज़ाया ना करें। और यहूद की शरीयत के बिगाड़ में भी यही वजह थी। तो अमल के नुक्ते, अल्लाह की निशानियां देख के गौर व फिक्र करना है, पैदावार पर अल्लाह का हक अदा करना है, इसराफ से बचना है, हर चीज़ पर अल्लाह को मालिक समझना है, लोगों को गुमराह नहीं करना और अल्लाह पर झूठ नहीं बांधना। आगे बड़ी अहम आयत है रुकू 5 में 145 से 150, अल्लाह के हलाल और हराम की पाबंदी, यानी असल में ये पूरे दीन इस्लाम का खुलासा है। इस्लाम इना नटशल क्या कुल ला अजीदु फी मा ऊहिया इलैया मुहर्रमा, यानी अब ये सारी बातें इनसे सुन के अल्लाह के नबी से कहलवाया जा रहा है कि मुझे तो अल्लाह की किताब में ऐसे कोई दलायल नहीं मिलते जिससे ये सारी चीज़ें हलाल या हराम हो। आप कह दीजिए जो कुछ अहकाम बज़रिए वही मेरे पास आए, इनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो या कि बहता हुआ खून हो या खिंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का ज़रिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामज़द कर दिया गया हो, फिर जो कोई शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि ना तो तालिब लज्जत हो यानी टेस्ट कॉन्शियस और ना तजावुज़ करने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूर रहीम है। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी में से भी इन दोनों की चर्बियाँ इन पर हमने हराम कर दी थी, मगर वो जो इनकी पुश्त पर जांतड़ियों पर लगी हुई हो या हड्डी से मिली हुई हो, इनकी शरारत के सबब हमने इनको ये सज़ा दी थी और हम यकीनन सच्चे हैं। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अज़ाब मुजरिम लोगों से न टलेगा। ये मुशरिकीन यूं कहेंगे कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो हम ना करते। ये भी नोट कीजिए, आज भी लोग कहते हैं भाई अल्लाह रोक ले हमें, अगर अल्लाह को ये काम पसंद नहीं तो फिर वो हमें रोकता क्यों नहीं। तो ये जुमला वो भी कहते थे कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते, यानी अपने सारे गुनाहों को अल्लाह के पलड़े में डालते हैं कि अल्लाह रोकता ही नहीं है इसलिए हम करते हैं। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कहिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे सामने जाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल पच्चू से बातें बनाते हो। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो चाहता तो तुम सब को राह रास्त पर ले आता। दुआ कीजिए अल्लाह हम सब को राह रास्त पर ले आए। आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम कर दिया है, फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इनकी शहादत ना दीजिए। और ऐसे लोगों के बातिल ख्यालात का इत्तबा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकजीब करते हैं और जो आखरत पर ईमान नहीं रखते और वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। क्या पता चला कि इस पूरे रुकू में हमें अल्लाह की रज़ा को पाने वाले काम क्या मिले कि झूठी गवाही नहीं देनी, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, बेसनद काम दीन के नाम पर नहीं करने, बेदात को रिवाज नहीं देना, सच्ची दलील के सामने झुक जाना, सरकशी नहीं करनी और महज क्या सराइयाँ नहीं करनी, यानी दलील के बगैर कोई नेकी समझकर काम नहीं करना। हाँ, जिस काम की दलील मिल जाए कोई भी नहीं करता ख़ानदान में बिरादरी में, फिर भी उसको करके रहना, क्योंकि अल्लाह ताला की ये एक सुन्नत है कि अल्लाह की किताब जिस कौम को मिल जाए अगर वो कौम किताब से गाइडलाइन लेने की बजाय सरकशी करे और अपनी मर्जी की नेकियां करने लगे तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर मुश्किल में डालता है। और जो इन पे चीज़ें हराम हुई थी ना उसमें कभी कभी तो इनके फुकहा ही हराम कर देते थे इज्तिहादात के नाम पे, और कभी अल्लाह ताला उन चीज़ों को हराम कर देता है। बस असल बात यह है कि इल्म के बग़ैर अमल ख़तरनाक है। आज गाड़ी नहीं कोई चलाता सीखे बगैर, कंप्यूटर चलाना ना आता तो लोग उससे ऐसे डरते हैं जैसे डरने का हक है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन के बारे में अपनी मर्जियाँ, रस्में, ज़ाहरी पाबंदियाँ, अल्लाह के नाम पर ये दीन है, ये दीन है, वो है। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम वो काम करो जिसके करने का हुक्म है। आयत 151 से 154 में अल्लाह ताला की इताअत के कुछ तकाज़े हैं। कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, यानी अब तुमने मक्का वालों की बातों के जाल तो देख लिए, वो तो खुद साख्ता हलाल और हराम के फतवे दे ही रहे हैं, अब तुम्हें बताऊँ हराम क्या है। यानी ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या हराम है और क्या हलाल। आप कहिए, आओ मैं तुमको पढ़कर सुनाऊं कि जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया है वो ये कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ। पहली चीज़ शिर्क है जो हराम है। ये बकरियों के पेट में निकले हुए बच्चों की बातें ना करो, शिर्क की बात करो। और माँ बाप के साथ एहसान करो और अपनी औलाद को इफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और इनको रिस्क देते हैं और बेहयाई के जितने तरीके हैं इनके पास भी मत जाओ, ख्वाब वो एलानिया हो और ख्वाब पोशीदा। और जिनका खून करना अल्लाह ने हराम कर दिया इनको कत्ल मत करो। हाँ मगर हक के साथ, इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया गया है ताकि तुम समझो। इस आयत के बारे में मुफस्सरीन कहा करते थे, बल्कि सहाबा कराम, कि जिसने नबी सल्लम का वसीयत नामा पढ़ना हो वो इस आयत को पढ़ ले। यदि इसमें डूज एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट है, और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो काबिले तारीफ़ हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश तक पहुँच जाए यानी बालिग हो जाए, और नाप तोल पूरी पूरी करो। और इंसाफ के साथ, हम किसी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ की करो, अगरचे वो शख्स कराबतदारी हो। और अल्लाह ताला से जो अहद किया है इसको पूरा करो। इनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम इसको याद रखो। और ये कि ये दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, बस इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो, कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। आप भी दुआ कीजिए अल्लाह हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर रखे। इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। फिर हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी थी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो और रहमत हो, ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। क्या पता चला, इस पूरे रुकू में डूज एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट थी। मसलन अमल के नुक्ते नोट करें, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, क्योंकि शिर्क सारे गुनाहों में से बड़ा गुना है। इसको अकबहुज़ ज़ुनूब कहते हैं और अकबरुल कबायर। और फिर उसके बाद माँ बाप के ऊपर एहसान। आपने देखा इस रुकू में एक ख़ास बात, सिर्फ माँ बाप के साथ अमल के लिए डूज था, बाकी सब डोंट्स है, नेगेटिविटी में आया है। और माँ बाप के साथ एहसान क्या है कि उनका हक भी तुम नहीं दे सकते। कोशिश पूरी करो कि उनके साथ अच्छे से अच्छा मामला करो। फिर बेहयाई और फुखश से रुकने की बात थी इसमें। क्या रवैये हैं अल्लाह की रज़ा को पाने के इसमें? अल्लाह हक है और हम पर हक रखता है, इस शऊर के साथ जीना और अल्लाह के अहकामात पढ़कर सुनाने हैं, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है, यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना, बेहयाई के करीब नहीं फटकना, और औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल नहीं करना। इसी तरह पैमाने और वज़न इंसाफ के साथ तोलने हैं, इंसाफ की बात करनी है, अल्लाह के अहद को पूरा करना है, रब की मुलाकात पर यकीन रखना है, नेकी की रविश अख्तियार करनी है और नसीहत को कबूल करना है। यानी आप देखिए कि 2 पेजेस पे आपको ये सारे अमाल जमा करने पड़े, इतने ज़्यादा इसमें डोंट्स और एक डू था, वबिल वालिदैनी एहसाना। आज कोई ऐसी नेकी ज़रूर कीजिएगा जिससे आपके वालदैन खुश हों। दुनिया में हैं तो उनकी खुशी के लिए कुछ कीजिए, और अगर जा चुके हैं तो फिर कोई ऐसी नेकी कीजिए कि कब्र में उनको पहुँचाई जा सके। और दिल से कहिए, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आगे रुकू नंबर 7 है, 155 से 165, किताब हिदायत की पैरवी करना। वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिउ। और ये किताब है जिसको हमने भेजा बड़ी खैर बरकत वाली, बस इसका इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। कहीं तुम लोग यूँ ना कहो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो दो फ़िरके थे इन पर नाजिल हुई, यानी यहूद और नसारा, और हम इसके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे। या यूँ ना कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज़्यादा राह रास्त पर होते। तुम्हारे पास रब की तरफ से एक किताब वाज़े और रहनुमाई का ज़रिया और रहमत आ चुकी है। अब इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयात को झूठा बताए और इससे रोके? हम जल्द इन लोगों को जो हमारी आयतों से रोकते हैं इनके इस रोकने के सबब सख्त सज़ा देंगे। क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतज़िर हैं कि इनके पास फरिश्ते आएँ? क़यामत की निशानियों में से अब एक निशानी का तذکرہ इधर, इनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए। जिस रोज़ आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुँचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता, या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतज़िर रहो, हम भी मुंतज़िर हैं। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और वो गिरोह गिरोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। नोट किया आपने ये बात? फ़िरकों में बंटने वाले, गिरोहों में बंटने वालों से नबी का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हमें इस्लाम पे राज़ी कर दे। आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, फिर इनको इनका किया हुआ जतला देंगे। जो शख्स नेक काम करेगा इसको इसके 10 गुना मिलेंगे, और जो शख्स बुरा काम करेगा इसको इसके बराबरी सज़ा मिलेगी, और इन लोगों पर जुल्म ना होगा। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वो एक दीने मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वो शिर्क करने वालों में से ना थे। आप फरमा दीजिए, इन नसलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ, और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। आप फरमा दीजिए, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ? वो मालिक है हर चीज़ का, और जो शख्स कोई भी अमल करता है और वो इसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतलाएगा जिस जिस चीज़ में तुम इख्तलाफ करते थे। वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया, ताकि तुमको आजमाए इन चीज़ों में से जो तुमको दी गई हैं। नोट करिए, हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, ज्यादा नेमते ज्यादा सवाल, कम नेमते कम सवाल। एज अ स्टूडेंट क्या दिल चाहता है पेपर में ज्यादा सवाल आए कि कम? और एज अ स्टूडेंट ये क्या दिल करता है कि जल्दी से पारा पूरा हो जाए या कम हो? भी सब कुछ, तर्जमा भी हो, थीम भी हो, पढ़े भी आराम आराम से, और हो भी जाए 1.5 घंटे में। यानी आप देखिए कि एज अ स्टूडेंट तो हमेशा दिल करता है जल्दी फारिग हो, और एज अ टीचर क्या दिल करता है? हाय, ये फारिग हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, फिर हम इनको मिस करेंगे। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इस आयत में क्या बताया कि नेमते इम्तिहान के पर्चे हैं। जिसका घर 5,000 फुट पे है ना, उसका पेपर बड़ा लंबा है, और जिसका पेपर 100 गज पे है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गरीब गुरबा क़यामत के दिन अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे। सेम नेकियां करने वाले दो शख्स, सेम एक ही दिन पैदा हुए, एक ही जैसी नेकियां की, सब कुछ, लेकिन जिसको दुनिया में नेमतें ज़्यादा मिली हैं और फिर उसने उसका हक भी नहीं दिया। ये भी नोट करें, कुछ लोग साथ साथ अपना हक देते जाते हैं। वो चार किस्म के लोग आपने सुने हुए ना, कि जिनको अल्लाह ने दुनिया भी दी आखिरत भी देगा इंशाल्लाह। कुछ को ना दुनिया मिली लेकिन आखिरत मिलेगी, कुछ को आखिरत नहीं मिलेगी सिर्फ दुनिया मिलेगी, और कुछ बदनसीब है ना दुनिया मिली ना आखिरत, ना सनम मिला ना खुदा मिला। हमें किस में दुआ करना है होने की? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरती हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। तो फिर आजमाइश में पूरा कैसे उतरे? अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसके रास्ते में लगा दें, अपनी ज़रूरियात पूरी करें, और बाकी तईशात सारी अल्लाह के दीन की। बिल यकीन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मगफरत करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। क्या पता चला? आयत नंबर 160 में एक नेकी का 10 गुना। अश्रु अम्सालिहा, नेकी के लिए नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। सहाबा नफ्स से जिहाद करते थे, और उनकी ज़िंदगियां सब्र और कुर्बानियों का मुंह बोलता सबूत थी। तो आपकी मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए कैसे हुई? उसी के लिए जीते। वो कहते थे कि हम तो इसीलिए जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। वो भी इसी आयत पे है, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया, सिर्फ खाना काबा के तवाफ़ करते हुए नहीं, सुबह उठकर रात बिस्तर पे जाने तक पूछा करें मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आज मुझसे क्या खैर का काम हुआ। और अगर अल्लाह आपसे नेकियों के काम ले रहे हैं तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, शुक्र का सजदा कर ले और मजीद की दुआ कर ले। इंशाल्लाह रज़ा इलाही पाने वाले काम, फोकस्ड होना, यकसू होना, अल्लाह के लिए हर अमल खालिस करना, अल्लाह की फरमा बरदारी करना, और मेरा जीना मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए इसका यकीन रखना, आपस में इख्तलाफ नहीं करना और दीन को टुकड़े टुकड़े नहीं करना, और अल्लाह ताला आपसे मुझसे इस चीज़ को कबूल कर ले। तो ये थी खूबसूरत सूरत अल अनाम।